Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Tav tattvam na janami kidrishosi Maheshwara yadrishosi Mahadeva तादृशाय नमो नमः। ओम शांति। मुंडक उपनिषद शांति पाठ। उपनिषद की यह परंपरा रही है कि उपनिषद की श्रुतियों पर विचार करने से पूर्व गुरु और शिष्य दोनों ही मिलकर शांति पाठ। शांति पाठ वस्तुतः तैयारी है गहन में छलांग लगाने की, गहरे में डुबकी लगाने की तैयारी है। मन का समाहित होना, सात्विक वृत्तियों से तादात्म्य स्थापित करना और अपने मन को सत्य मार्ग पर आरूढ़ करने के लिए पूरी तन्मयता से, प्राणापन से उत्प्रेरित करना। उपनिषद का शांति पाठ आम साधक के लिए या उसको मंद साधक कहते हैं, उसके लिए ये प्रार्थना है। और जो जिज्ञासु है उसका ये संकल्प है, और जो ऋषि है, जो सिद्ध है, उनकी ये अनुभूति है। इसलिए ये प्रार्थना भी है, ये संकल्प भी है, ये अनुभव भी है। ये निर्भर करता है अपनी अपनी स्थिति पर कि साधना के रास्ते में कौन किस जगह पर पहुंचा हुआ है। इसमें ओम शब्द जो सबसे पहले ही है, इस शब्द का उच्चारण करते ही ओम से जुड़ी हुई अनेक आध्यात्मिक वृत्तियां जागृत होती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो साधक की चित्त वृत्ति में इन शब्दों ने कहीं कोई स्थान नहीं बनाया। जैसे गंगा स्नान में तैयारी के लिए जाते हैं स्नान करने, तो स्नान करने के लिए निर्वस्त्र होना पड़ता है, कपड़े उतारने पड़ते। आत्महत्या के लिए कपड़े उतारने की जरूरत नहीं, सीधे छलांग लगा दो ठीक। ओम का उच्चारण हमारी वासनाओं को दूर करता है। आध्यात्मिक स्नान का मतलब है निर्वासना, निर्वसन होता है शारीरिक स्नान, वस्त्रों को उतार दो और आध्यात्मिक डुबकी के लिए वासनाओं को उतार दो। ओम को शिशु वेद कहा गया है। शिशु वेद, वेद का बीज है। सभी वेदों का सार गायत्री है। गायत्री का सार व्याहृतियां हैं भू भव स्व, और भू भव स्व का सार ओम की मात्राएं हैं आ उ और मा। इन सब का समन्वय बिंदु में है। बिंदु की कल्पना हमें नाद तक पहुंचाती है। नाद का अर्थ होता है ईश्वरीय आवाज को सुन लेना। प्रार्थना है अपनी आवाज को ईश्वर तक पहुंचाना। मैं क्या चाहता हूं, ये बात उस परम सत्ता तक पहुंचे, ये हम प्रार्थना के माध्यम से कह लेते। और वो परम सत्ता हमारे से क्या चाहती है, उसकी आवाज क्या है, वो नाद के माध्यम से हमारे तक पहुंचती है। प्रार्थना संप्रेषण शक्ति का नाम है। हम अपनी बात कितनी कह सकते हैं स्पष्टता से किसी को, अपनी बात को समझाने में की हमारे में कितनी क्षमता है, जिसे कम्युनिकेशन कहते हैं आप, कि हम अपनी बात को बड़े स्पष्ट ढंग से किसी को कितना समझा सकते हैं। जितनी किसी में अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने की और अपनी जरूरत को उसे समझाने की क्षमता होगी, उतना ही वो व्यक्ति अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। वो चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो या आध्यात्मिक क्षेत्र, आदि भौतिक हो आदि दैवक हो या आध्यात्मिक। तो संप्रेषण शक्ति, पावर टू कम्युनिकेट, और नाद का मतलब होता है ग्रहण शक्ति। एक है अपनी बात कहना, दूसरे है दूसरे की समझने की कितनी क्षमता है हमारे, दूसरा जो कह रहा है उसको समझने की हमारे में कितनी क्षमता है, इसको ग्रहण शक्ति कहते। हमारे में ग्रहण शक्ति कितनी है, ताकि दूसरे की बात को भी अगर हम ठीक तरह से ग्रहण कर सकते हैं, ठीक तरह से समझ सकते हैं, तो हमारे संबंध हमेशा हमेशा के लिए बने ही रहे। अपनी बात को ठीक से कहना, दूसरे की बात को ठीक से समझना, जहां ये दो बातें नहीं होती वहां ही पंच क्लेश होते हैं। झगड़ा भी वही है, तनाव भी वही है, सारी परेशानियां भी वही। यही बात अध्यात्म में आत्मा और बुद्धि की है, या और इसको सरल करना हो तो बुद्धि और मन की है। बुद्धि क्या कहती है उसको मन कितना ग्रहण करता है और कितना उस पर चलता है। अगर बुद्धि की राय पर मन चलता है तो कोई समस्या नहीं, और अगर मन ही अपनी बात मनवा ले बुद्धि से, युक्तियों से, किसी भी तरह से, तो फिर रास्ता अध्यात्म का नहीं होता। ओम पर जब हम विचार करते हैं कभी, ये मुंडक उपनिषद है, मांडुक्य ओम पर ही आधारित, उसमें कुल 12 मंत्र हैं और उसमें ओम की ही व्याख्या, उसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि का उदाहरण देते हुए, विश्व तेजस प्राज्ञ का उदाहरण देते हुए, ओम की तीनों मात्राओं को अ उ और मा को उसमें ठीक तरह से समझाया गया। इसलिए देखो, जो व्यक्ति कहीं गया हो, भौतिक दृष्टि से भी, सांसारिक दृष्टि से भी, अगर आप में से, हमारे में से कोई कश्मीर गया हो और कश्मीर में डल लेक देखी हो, झील देखी, तो डल का नाम लेते ही सब स्मृतियां और एक दृश्य सामने आ जाता। और जो वहां गया ही नहीं, उसके लिए कोई इस नाम का कोई महत्व नहीं और ना ही वो उस आनंद से परिचित है जो उस झील को देखकर लिया जा सकता है। ऐसे ही जिसका ओम का चिंतन नहीं, जिसने ओम के रहस्य को समझा नहीं, उसके लिए तो इसका कोई अर्थ नहीं, ओम कह के आगे बढ़ो। और जिनका चिंतन ही ओम के इर्द गिर्द घूमता रहा हो, क्योंकि ये अपने आप में पर्याप्त है, ओम साधन भी है, ओम साध्य भी है, ओम ध्यान का विषय भी है, ओम प्रवचन का विषय भी, ज्ञान का विषय भी। आपको कोई दूसरा ऐसा शब्द मिलेगा नहीं जिसका ध्यान भी किया जा सके, जिसका व्याख्यान भी किया जा सके, जिसका जप भी किया जा सके। तो ये एक ही ऐसा शब्द है हमारे ऋषियों द्वारा सोचा गया तो नहीं, ऋषियों की चेतना में ये अवतरित हुआ। इन शब्दों को किसी ने बनाया नहीं, इन ध्वनियों को किसी ने सोच समझ के बनाया हुआ नहीं, ये चेतना की सहज ग्रहणशीलता है कि जिसमें सभी शास्त्रों का सार, जिसमें लक्ष्य भी हो और लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन भी हों कि इस माध्यम से वहां तक पहुंचो, और अधिकारी का भी निरूपण, कौन अधिकारी है ओम को कहने का, ये जब ओम का प्रवचन शुरू करते हैं या सोचते हैं तो तभी बात तय हो जाती। उसमें सभी लोग आएंगे, उसमें ऐसा नहीं है कि इसमें केवल ब्राह्मण है या वैश्य है या स्त्री हो या पुरुष हो। अध्यात्म के क्षेत्र में तो केवल वासना रहित होना, सत्य के प्रति समर्पित होना ही एकमात्र योग्यता है। और ये सूत्र हैं जो हमें सत्य तक ले जाते, जिनमें ओम सबसे शक्तिशाली है और सबसे अधिक प्रभाव देने वाला भी है। ओम का उच्चारण करके भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम देवा, कोई ऋषि जो अपनी जगह पर पहुंचे हुए हैं, जिनको हम सिद्ध कहते हैं, जो सत्य से एक हो चुके हैं, वो भी अगर कोई प्रार्थना करते हैं या संकल्प करते हैं या अपने अनुभव को ही दोहराते, तो इसका अर्थ ये होता है क्यों हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, क्यों हमें इस संकल्प को हर रोज दोहराना चाहिए। केवल इसलिए कि कहीं पर भी गिरने का खतरा, सिद्ध अवस्था में पहुंचकर भी संभावना है हम फिर नीचे गिर जाएं। कदम इंसान का राहे दहर में थर्रा ही जाता है, चले कोई बच के कितना फिर भी ठोकर खा ही जाता है। संभावना रहती है गिर जाने, इसलिए हमारे में कभी ये बात दम्भ रूप से आ ना जाए कि अब मैं कभी गिर नहीं सकता, अब मैं उस अवस्था तक पहुंच गया हूं जहां पहुंचना, ऐसा कभी मन में भाव ना आ जाए। इसलिए पहली बात ही वो कहते हैं भद्रम करणे विश्रुयाम देवा। देवा का अर्थ होता है परम सत्ता की विभिन्न शक्तियां। जो परम सत्ता जिसको हम कहते हैं या केवल सत्य जिसको कहते हैं, परात्पर तत्व जिसको कहते हैं, उसकी विभिन्न शक्तियां, जैसे हमारे में सुनने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, पकड़ने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, ये सब शक्तियां, इनको कहते हैं विभिन्न शक्तियां। इनमें से कौन सी शक्ति किस समय खत्म हो जाए कह नहीं सकते। जरूरी नहीं है कि ये सारी शक्तियां एकदम खत्म हो, कोई एक खत्म हो सकती है बाकी रह सकती, कभी चार शक्तियां खत्म हो सकती हैं एक ही रह सकती। तो इसलिए जैसे ये विभिन्न बल्ब होते हैं ना कि पीछे स्विच ऑफ हो गया तो वो वाला बुझ गया, ये वाला रह गया, ऐसे ही इसको थोड़ी देर के लिए समझ लो आप, उसको आम बोलचाल की भाषा में कि शक्ति का शून्य हो जाना कृत्रिम भाव से भी होता है और प्राकृतिक भाव से भी होता है। जैसे डॉक्टर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाकर हमारी स्पर्श शक्ति को थोड़ी देर के लिए सुला देते, अलग कर देते, फिर उसके बाद कुछ महसूस नहीं होता, वो कुछ भी काटते ये करें। तो जो परम सत्ता की विभिन्न शक्तियां समष्टि में व्याप्त, परम सत्ता की विभिन्न शक्तियों को देव कहते हैं, जिनके माध्यम से कुछ प्रकाशित हो, जिनके माध्यम से वो विभिन्न शक्तियां, जैसे हवा में ये शक्ति है, धूप में ये शक्ति है, जल अग्नि की शक्ति, इस तरह की शक्ति, फिर उन शक्तियां का व्यक्तिकरण किया गया, पर्सोनिफिकेशन, किसी का नाम इंद्र रख दिया गया, किसी का बृहस्पति, किसी का वरुण, किसी का अग्नि, साथ में उनके देवता शब्द जोड़ दिया गया, अग्नि देवता, चंद्र देवता, सूर्य देवता, वायु देवता। तो ये सब देवता का मतलब विभिन्न शक्तियां, समष्टि की विभिन्न शक्तियां। यहां पर जो बात वो कह रहे हैं ओम के उच्चारण के बाद, भद्रम करणे भी श्रृणुया, भद्र शब्द जो है शुभ और प्रसन्न, इसमें दो बातें छुपी हुई होती हैं। भद्र शब्द में अशुभता का संकल्प है और प्रसन्नता का संकल्प। शुभ भी हो, जैसे हमारा मन है, हमारा मन अशुभ ना हो और अप्रसन्न भी ना हो। भद्र का अर्थ होता है शुभ भी हो और प्रसन्न भी हो। कई बार मन बहुत प्रसन्न होता है लेकिन है वो अशुभ। आतंकवादी जब अपने किसी मकसद में सफल हो जाते हैं तो बहुत प्रसन्न, प्रसन्न तो है लेकिन अशुभ है साथ, अशुभता जुड़ी हुई है। इसलिए भद्र शब्द वहां पर इसका प्रयोग नहीं होगा। अशुभता में समाज का नुकसान और अप्रसन्नता में व्यक्ति का अपना नुकसान। आपका मन बड़ा शुभ हो लेकिन प्रसन्न नहीं, तो उस आपकी प्रसन्नता से समाज का लाभ तो है लेकिन आप प्रसन्न नहीं है, इसलिए आपका अपना लाभ नहीं, तो शास्त्र की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो। जहां पर ये दोनों बातें जुड़ जाएंगी, हो सकता है वहीं पर ही हमें वो मिल जाए जिसकी हम तलाश में। हो सकता है आगे पढ़ने की जरूरत न पड़े, हो सकता है आगे सुनने की आवश्यकता न पड़े, हो सकता है हमने वो जान लिया जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता। एको शब्द सम्यक ज्ञात्वा सुप्रयुक्तः लोके च वेदे च काम दुक भावती। एक ही शब्द को अगर ठीक तरह से समझ लिया जाए और ठीक तरह से जीवन में चरितार्थ कर लिया जाए तो वो इस लोक और परलोक में काम धेनु का काम करता है। जो कुछ भी चाहोगे उसी से मिल जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमारे उपनिषदों का कोई एक शब्द, कोई उस शब्द में थोड़ी बहुत भी आप उसको छोड़ नहीं सकते कि इसको छोड़। हर शब्द का एक अपना अपना महत्व है, क्योंकि ये शब्द साधारण व्यक्तियों के नहीं, ये असल में सत्य ही स्वयं किसी को माध्यम बनाकर अपने को अभिव्यक्त कर रहा है। क्यों अपने को अभिव्यक्त कर रहा है? क्योंकि वो चेतन भी है, जड़ नहीं। और जहां चेतनता होगी, चित्त होगा, वो अपने को अभिव्यक्त किए बिना, अपने को दिखलाए बिना, अपने अस्तित्व को सिद्ध किए बिना रहेगा नहीं। इसलिए सत्य ही अपने उल्लास की चरम सीमा में मुखरित हो उठता है। दूसरे शब्दों में आप ऐसा कह लो कि जब आपका अपना मन, जो कि श्रवण के माध्यम से ही बनना है, जब आपका अपना मन शुभ और प्रसन्न दोनों ही का सम्मिश्रण हो गया तो सत्य स्वयं उसमें प्रकट हो जाएगा। उस समय जो कुछ भी आपके मुंह से निकलेगा वो सत्य की ही अभिव्यक्ति है, किसी और चीज की नहीं। केवल प्रसन्न हो लेकिन स्वार्थ साथ में रह गया, स्वार्थ रहत है लेकिन प्रमाद है, तब भी भद्र शब्द का अर्थ पूरा नहीं होगा। जब वो कहते हैं कि भद्रम श्रुण्याम, भद्रम का अर्थ हम वो सुने जिसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर शुभ और प्रसन्नतादायक हो। करने भी यहां पर कान का बहुवचन है, कानों से, अर्थात जितने भी कान हैं, मेरे भी, आपके भी, कौवे के भी, गधे के भी, घोड़े के भी, जितने भी जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जलचर हैं, थलचर, उन सब के कान। यहां केवल अपने कानों की बात नहीं है कि मेरे कान ये सुने, पूरे ब्रह्मांड में सभी दिशाओं से उसके कान तो दिशाएं ही हैं, जिसको आप परम सत्ता कहते हैं। दसों दिशाओं में शुभ और प्रसन्न ध्वनि का श्रवण करना, शब्दों का श्रवण करना, क्योंकि जब उस परम सत्ता के अतिरिक्त और कुछ दूसरा तत्व है ही नहीं, एक ही तत्व, और वो है सच्चिदानंद, सत्चित आनंद, तो फिर उसके अतिरिक्त कोई दूसरी बात जब है ही नहीं तो और कुछ सुनाई ही कहां से देगा, वही देगा। या तो उसके अतिरिक्त किसी और बात को स्वीकार करें कि वो भी है और एक कुछ दूसरा भी। एक बात और यहां पर कल भी आपसे एक बात कही थी, वो हमारी इस ब्रह्म विद्या का आधारभूत सिद्धांत है कि वो परम सत्ता जिसको आप परमात्मा कहते, वो ना सत्य है और ना असत्य, दोनों का प्रकाशक। इसका अर्थ ये है कि वो सत्य भी है और वो असत्य भी। उसको ये नहीं कह सकते कि वो केवल यही है और वो नहीं, कि वो ये है और वो नहीं, ऐसा कहने से उसको परिच्छिन्न कर देंगे। जब हम ये कहते हैं कि सत्य भी वही है असत्य भी वही है, इन दोनों से परे भी वही, इसका अर्थ ये होता है कि जड़ भी वही है, चेतन भी वही है, और इन दोनों से परे परम चेतन भी वही। जब हम जड़ और चेतन कहते हैं तो उस समय ध्यान रख लो, इसका अर्थ होता है शरीर और मन।